Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhadram No Apivathaya Manaha. Om Shanti Shanti Shanti. श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दश श्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायु न खं नेन्द्रियं वा न केषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्ते कसिदः तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहाना तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्तात् शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न सांख्यम् न शैवम् न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमा सकादेर्मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापराधि नियद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस् तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजस प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणाम् तुरीयस्तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वाधितत्व प्रयोगात् स्वतः सिद्धवाद् अनन्याश्रयत्वात् जगतोच्चमेतत् समस्तम् तदन्य तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न चैकम् तदन्यत् द्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशु मद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदा तस्सिद्धम् ब्रवीमि कथम् सर्ववेदा
सिद्धम् ब्रवीमि।
दशश्लोकी का पाठ हम लोगों ने किया। न माता पिता वा न देवा न लोका, न वेदा न यज्ञा न तीर्थम ब्रुवंती सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात्। हेतु है कि ये जो जीव, सबसे पहले श्लोक में पांच भूतों का नाम लिया, हम लोगों के अपने शरीर के हिसाब से बाहर का जगत अंदर का जगत ऐसा बोला जाता है। जब तक गिलास में पानी है तो बाहर का पानी, और पेट में आ गया तो अंदर का पानी नाम पड़ जाता है। पानी तो वही है ना। अच्छा, जो जो हम लोग अंदर धारण करते हैं शरीर से संबंधित होते, वो चीज खराब हो जाती है। हम लोग खराब करने के लिए आए हुए क्या? बनते तो बड़े श्रेष्ठ है, हम मनुष्य हैं। थाली में भोजन देखो कितना अच्छा लगता है, लेकिन कब तक अच्छा है? जब तक गले से नीचे न उतर जाए। ऐसा उसको बतीसी में चबा चबा के मिला के डालते अंदर, और वही यदि कहीं उलट जाए, उदान वायु उसको ग्रहण न करे, बोले उल्टी आ गई। जैसा खाते समय उसकी सुगंधी थी, अंदर से जैसे वो वापिस आवे तो उसकी गंध भी बदल जाती है। इतने जल्दी परिणति बदलाव आता है, फिर भी हम मानते क्या है? हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े अच्छे हैं। हम लोगों का नाम यदि रख दिया जाए, संसार के वस्तुओं को बिगाड़ बिगाड़ के उपभोग करने वाले प्राणियों, सुनो हमारी बात, कैसा लगेगा सुनने में? बहुत खराब लगता है। और तो और, पशु आदि घास खावे, गोबर होता है तो काम में भी आता है, और हम लोग यदि कुछ खाए पिए और वह यदि विकृत होता है तो कितने घृणास्पद होता है। ऐसे जो स्थूल शरीर के अंदर एक एक चीजों को आत्मसात करते हुए अन्न आदि को ग्रहण किया, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांच भूतों के माध्यम से पांच विषयों का सेवन करना, लेकिन इन सब में किसकी बड़ी महती महिमा है? तो कहा इंद्रिय रूपी जो अग्नि, अग्नि जो ये प्रज्वलित हो रही है, जब तक इंद्रियों के माध्यम से इस अग्नि का प्रयोग बाहर के जगत के लिए होता है, तब तब हम अपने आनंद स्वरूप से वंचित होते हैं, आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। कल आप लोगों ने यही तो सुना था, क्या था वो? संसारी अपने को मानने वाले, सारे प्रपंच, प्रपंच आखिर है क्या? पांच चीजों को जब ले लो तभी उसका नाम पड़ जाता है प्रपंच। पांच चीजें हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इसी से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अंदर के प्रपंच बाहर के वस्तुओं को लेकर उत्तरोत्तर जब दृढ़ होता है, उतने उतने हम अपने स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जब जब विषय का उपभोग करते हैं ना, तो उस विषय में आत्मा का दर्शन करना, उस वस्तु के माध्यम से अधिष्ठान की तरफ दृष्टि रखना, तब तो अपने अग्नि को मानो हम अंदर ही प्रज्वलित कर रहे हैं, अपने आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। और विषय की तरफ ध्यान जाए और अधिष्ठान की तरफ ध्यान न रहे, इससे फिर दुखों का अंबार लग जाता है। दुख और आनंद दोनों में क्या भेद है? परसों दो तीन दिन पहले बता दिया, एक चीज का भी उपभोग करते हम, आंख से रूप का ज्ञान होता है, लेकिन उससे मिलने वाला आनंद पूरे शरीर में प्रकट होता है। शब्द कानों से सुनते हैं लेकिन उससे आनंद जो प्रकट होता है पूरे शरीर में प्रकट होता है। एक सामान्य वस्तु कितनी बड़ी बात है। भगवान ने ऐसे जो ये कलात्मक षोडश कला प्रातर नमामि प्रातस्मरामि प्रातर भजामि है ना, सबसे पहले आता है प्रातस्मरामि तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। वह जो ब्रह्म है कैसा है जिसका मैं प्रातःकाल अपने मन से उनका स्मरण करता हूं, कहां पर है तो हृदय संस्फुरत, हृदय में स्फुटित हो रहे संस्फुरित हो रहे, जो ये धड़कन चल रही है ना यही तो है। आजकल बोलते हु इज योर क्या हो हार्ट बीट बोलते शायद धड़कन को, आपके धड़कन कौन है, आपके हृदय के धड़कन कौन है, तो कहना पड़ेगा परमात्मा है। और कौन है हमेशा यहां पर देखिए शरीर में जो ऊष्मा है ना गर्माहट ये बनी रहती है। बाहर के ऊष्मा यदि अंदर आ जाए तब बोलते बुखार आ गया, और अंदर की ऊष्मा यदि कम पड़ने लग जाए तो भी परेशानी आएगी। कितने ऊष्मा चाहिए हम लोगों को 98.4, उससे ऊपर जाए थर्मामीटर लेके नापते हैं, अब बोले इस गर्मी को निकालने की कोशिश करो। और जितने भी वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं उससे अंदर की जो ये अग्नि ज्वाला है वो हमेशा एक समान रहे, इसमें उतार चढ़ाव आ जाए, बाहर से आकर के अंदर बढ़ जाए तो परेशानी, और अंदर वाले घटने लग जाए तो भी परेशानी है। उसके लिए मांडू की उपनिषद याद कर लो, अदृष्टम अव्यवहार्यम प्रपंचोपशमम शांतम, और शिवम को एक साइड में करके अद्वैतम करो। पहले शिवम तो है ही, शिवरूप है, लेकिन शिवरूप मतलब आनंद रूप। अंदर के अग्नि कैसे रहे शांत, जब जब हम शांति से बैठते हैं तब तब हमें अपने आनंद का थोड़े से जो उसकी झलक मिल जाती है। प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंच का उपशमन करना है। जब हम लोग खाते हैं सुनते हैं देखते हैं उस समय हम अपने स्वरूप में होते कि विचलित हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। इसलिए कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग होता है। ये जो कर्तृता और भोक्तृता की बात आती है ना, ज्ञानेंद्रियां न हो तो कितने भी हम कर्म करते रह जाए भोग करने वाले है कौन, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। इसलिए भोग की उपलब्धि है ज्ञानेंद्रियों से, कर्म संपादित होते कर्मेंद्रियों से, इनका आपस में बड़ा संबंध है। तो जिस तत्वमसी महावाक्य का पूरा ये प्रतिपादन किया दश श्लोकी के माध्यम से, इसमें हम लगभग अंतिम पड़ाव में है तीनों श्लोक के माध्यम से, जिस त्वम नाम के जो जीव है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, वह जीव परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी अपने को भिन्न मानने लगा। जब कहा जाता है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाओ तो उनका मिलना कैसा है, क्या ये कोई संयोग संबंध है, कौन सा संबंध है फिर, है तो ये नित्य संबंध है, ऐसा तो नहीं थोड़ी देर के लिए इसको अलग मान लो उसमें गया और मिल गया। बाकी वस्तुओं का जैसा मिलना होता है वैसा जीवात्मा परमात्मा का मिलना नहीं होता, बीच में जो जो विरोधी चीजें हैं उनको हटा देना, यही है वेदांत की प्रक्रिया। और इसी के लिए स्वाध्याय प्रवचन बार बार करने के लिए कहा गया कि जब जब अपने मुक्ति के अनुभव में, कल यही बात थी कि मैं मुक्त हो गया या मुझे मुक्ति मिल गई, ये भाषा नहीं होती, बल्कि जो बंधन की प्रतीति थी उसके निवृत्ति कर देना, यह है मुक्ति। मुक्त तो है ही, अनिच्छन नपि मुच्यते विमुक्तश्च विमुच्यते, जैसे उसने इतनी आराधना की भगवान की पूजा की अपने शरीर में ऐसी भावना की उसने चंड की पत्नी ने, एक एक इंद्रियों को परमात्मा में अर्पित करती चली गई, तभी तो उसने कहा कि कब क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और हम लोगों की आदत क्या है, हर चीज की जानकारी चाहिए मिले। जब हम लोग सोने जाते हैं तो जानकारी को लेकर के जाते हैं तो उसको मिटाते कि बनाए रखते हैं। हम सोने जा रहे हैं, देखो मैं सोता हूं, ऐसा जब तक पता रहेगा नींद आएगी नहीं। गए सब कुछ लीन हो गया, सम्मेलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, जैसे आंखें मिली फिर कहां क्या हुआ कुछ पता चलता रही। उसमें जो एक आनंद का अनुभव है, ऐसे जागृत अवस्था में सब कुछ हो रहा है, जान भी रहे हो देख भी रहे हो, लेकिन साक्षी भाव में जब आप बैठे हो, लोग बोलते हैं ना इनके सामने कुछ भी घटना घटे किसी भी चीज में भूमिका नहीं निभाते, देखते रहो लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो, सम्मिलित मत हो। अभी हम लोग क्या है, बाहर से सम्मिलित नहीं भी हो तो मन में कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष की भावना बन जाती है, क्योंकि ये प्रतीति तो होती है, मन है संकल्प विकल्प करने वाला, रहा नहीं जाता, और कभी टिप्पणी भी कर जाते। और जितना जितना साक्षी की ओर हम दृढ़ होंगे, बड़े से बड़े पहाड़ की चट्टानें टूटती दिखाई देवे फिर भी हम अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, तब समझ लेना चाहिए कि अब जो हमारा ये साक्षी भाव है कैसा दृढ़ होता जा रहा है। तो जैसे चिदाभास रूपी ग्रंथि लड़की वाले पक्ष और लड़के वाले पक्ष को धमका रहा है, लेकिन जैसे दोनों एक होते हैं तो उसमें से वह गायब हो जाता है। ये विद्यारण्य स्वामी जी ने वह अच्छा दृष्टांत दिया है, कभी आप लोग पढ़ोगे तृप्ति द्वीप प्रकरण में, तो बहुत सुंदर दृष्टांत है, उसमें इसी तरह की बातें आती है कि चिदाभास अपना साम्राज्य तब तक फैला के रखता है जब तक इस बुद्धि का परमात्मा के साथ मिलन ना हो जाए। बुद्धि का परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी बात चल रही है ना, इंद्रियों के द्वारा विषय का जो उपभोग करते तो है हम लोग, अधिष्ठान की तरफ दृष्टि नहीं बन पा रही है, इसलिए अंदर की अग्नि प्रज्वलित न होकर के थोड़ी ठंडी होने लगती है। और शरीर में यदि शीतलता आ जाए, ठंडक आ जाए, क्या बोलते हैं उम्र होने पर, आजकल हम भी अब ढीले हो गए, ठंडे हो गए। जवानी में हम कितने उछल कूद करते हैं, कोई भी काम हमारे लिए मिनटों में निपटा लेते हैं हम, वही काम अवस्था आने पर घंटों में निपटाना पड़ता है, या हिम्मत हार जाते हैं, अरे महाराज एक वो समय था अब तो बात खत्म हो गई। अब ये जो मूर्ति बनी है, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी, ऐसी मूर्ति को लेकर के कोई ऐसे हुए, नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन उनका ऐसा सिद्धांत था कि ये जो मूर्ति वाले जितने हम बैठे हैं ये सब के सब झूठा है, और इसीलिए मूर्ति पूजा का भी विरोध हो गया, हम मानते ही नहीं है। एक जगह पहुंचे आर्य समाज के जो प्रवर्तक हुए ना, स्वामी दयानंद जी महाराज, उनके लिए किसी ने लिखा, एक जगह पढ़ा, शास्त्रार्थ करते हुए पहुंच गए कहां, मिथिला की तरफ कहीं, और एक बड़े अच्छे पंडित जी थे, कहा शास्त्रार्थ करेंगे, क्या शास्त्रार्थ, उनका वही नारा था, ये मूर्ति आदि जो है वेद विरुद्ध सिद्धांत है, वेद ने परमात्मा का प्रतिपादन किया, मूर्ति पूजा कहां है क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए आप मूर्ति को नहीं मानते, बोले हाँ हम नहीं मानते, क्या शास्त्रार्थ किसके ऊपर करें, इसी के ऊपर करना है, बोले आप स्वामी जी हम एक सामान्य पंडित हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करूं उसमें आप पराजित हो अपमानित हो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले थोड़ी देर के लिए ना मैं सन्यासी हूं ना आप कोई पंडित हो, बस शास्त्र का जो अर्थ है उसके लिए हमें विवाद करना है, शास्त्रार्थ तो होना चाहिए। बोले ठीक है अब आप स्वीकार करते हो शास्त्रार्थ, बोले हम करते हैं, इसलिए तो आए, आटा मंगवाया, आटे में वो पिंड का भाव करके अभिमंत्रित करके, जैसे उनके दयानंद जी की आकृति थी उसी तरह की आकृति बनाई उस आटे में। अब उसमें थोड़ा सा जहां पर सुई घोपे तो दयानंद जी को शरीर में पीड़ा होती थी, हाँ थोड़ा और चुभाया तो उनको लगा शायद ऐसे कुछ टोना जादू करता होगा। जब ज्यादा जोर से सुई घोपा तो बोलते हाथ में खून आ गया उनके, कर रहा प्रयोग कहा आटे के पिंड में और हो रहा है कहां पर शरीर में, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे की जब बात आती है ना, तो उन्होंने कहा कुछ न कुछ तुमने कलाबाजी की है तभी ये सब हुआ है। बोले यही मान लो, जब एक मनुष्य अपनी कला से आटे के पिंड से आपके शरीर में अनुभूति करा सकता है तो उस परमात्मा ने कितनी बड़ी कलाकारी की है, एक एक चीजों की कैसी आकृति बनाई है, फिर आप बोलते हो कि हम इसको नहीं मानते। इन सभी रूपों में परमात्मा ही तो है, लीला करने के लिए आए। जरा अपनी तरफ से ध्यान बढ़ाओ। एक कथा सुनाते हैं आप लोगों को, ये कथा बहुत अच्छी भी है और इससे पूरे अध्यात्म की बात घटती है। एक कोई ऐसे व्यक्ति हुए, उसका नाम ही था सुधीर। कोई हो सुधीर तो बुरा नहीं मानना। अब वो राजा सुधीर विवाह किया, पत्नी का नाम था बरही। बरही क्यों नाम रखा? क्योंकि संस्कृत में बरही मतलब अग्नि भी होता है, बरही मतलब परमात्मा भी होते, बरही मतलब बढ़ना भी होता है। बृह वृद्धो धातु से बनता है और इसी से बृहत्वात् बृंगणत्वात् च ब्रह्म ये भी बनता है। तो बृही नाम की पत्नी से पहले तो संतान होने का योग नहीं बन रहा था, बहुत दिनों के बाद बड़े मुश्किल से एक कन्या हुई जिसका नाम रखा राधा। राधा होने के बाद फिर आगे संतान का युग बंद, लोग जोर डाले कुछ करो नहीं तो दूसरा विवाह करो। बोले नहीं नहीं जो हो गया ठीक है, कन्या मिल गई ना, अब क्या चाहिए। कुछ दिनों के बाद राजा सुधीर की जो पत्नी बरही, उसकी आयु पूरी हो गई, शरीर छूट गया। अब लोगों ने कहा ठीक है आप पत्नी की वजह से विवाह नहीं कर रहे थे, अब तो कर लो क्योंकि आगे राजपाट चलाने के लिए पुत्र का होना जरूरी है। तो वो भी सोच रहे थे कि उसके रहते शादी करता तो शायद उसको बुरा लग जाता, लोग जोर दे ही रहे, तो कहीं दूर देश से कन्या के साथ विवाह किया और उसका नाम था दीप्ति। दीप्ति के साथ विवाह होने पर उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा भोज। कथा सुन रहे ना आप लोग? अब इधर हो गई मां, कन्या की जो मां सौतेली मां, अपनी मां तो चली गई, सौतेली मां कैसा व्यवहार करती है। जब राधा बड़ी हो गई तो सुधीर के मन में चिंता होने लगी कि अब कन्यादान करना चाहिए। दीप्ति सोचती है कि इसके शादी में बहुत सारे दहेज में मालमत्ता देना पड़ेगा, तो टालती है कि न विवाह हो न विवाह हो। जब ज्यादा बड़ी हो जाती है तो अब सुधीर बोलते नहीं हम किसी के सुनने वाले नहीं, विवाह तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा बड़ी बेटी हो जाएगी बदनामी होती है। और उसने एक लड़का ढूंढ करके निश्चित कर दिया कि विवाह कराना है। जब विवाह का निश्चय हो गया तो कहा देखो हमने तो कभी किसी की शादी कराई नहीं, पहली बार अपनी बेटी की शादी करा रहा हूं, तो क्या क्या दिया जाता है ससुराल के लिए उसकी तैयारी तुम कर लो। अब उसके मन में तो पहले से कपट था कि माल देना पड़ेगा, इसलिए तो शादी नहीं करवा रही थी। अब ये काम सौंप दिया अपनी पत्नी को, कारीगरों से जो आभूषण आदि बनवाए वो भी दबा के रख गई, जो पैसे आदि थे वो सब भी दबा के रख गए। स्वार्थी दोषम न पश्यति, जिस व्यक्ति के मन में धन आदि के प्रति ज्यादा लोभ लालच हो जाए वह कोई भी आचरण करने से चूकता नहीं। लोभ पापस्य कारणम, इसलिए हम मनुष्यों को सबसे बड़ा क्या माना गया? लोभी, और सब कुछ छूट सकता है लेकिन लोभ छूटना बहुत मुश्किल है। ऐसा जब उसने उसके सारे माल दबा लिए और ऐसे पेटी जो देना था ससुराल के लिए सामान सब भर के, उसमें कुछ ज्यादा भरा ही नहीं, ऐसे कपड़े लत्ते थोड़ा डाल दिया, तो सुधीर की इच्छा भी हुई कि क्या क्या डाला उसमें देखे तो सही। कहने लगी जाने दो ना क्या देखना है, जो जो आपने दिया सब भर दिया है, ससुराल में खोलेगी, देख लेगी, और क्या है। अब वो जाती है ससुराल, ससुराल वाले भी कैसे, वहां पर जेठानी है, ननद है, सास है, ससुर है, सब के सब धन की तरफ निगाह रखने वाले, क्या लेके आई मायके से।